بالظبط. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो ये क्लास हमारी सूरह अनआम की तफसीर की क्लास होती है। इसमें हम आरफी कुरान तफसीर से पढ़ते हैं और आयत नंबर 108 से लेके 113 तक का जो मजमुआ है तो उसके हमारे को मसाइल पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे। अल-इल्मु यजीदु बित-तकरार, के इल्म तकरार से बढ़ता है। तो आप में से अक्सर हैं जिनको मौका नहीं मिलता बाकायदा तकरार करने का मौका, सबको नहीं मिलता, सब इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो अब एक तरह से ये तकरार शुरू हो गई है, फिलहाल ये तकरार शुरू हो गई है कि जुम्मे के दर्स में भी यही आयात डिस्कस की जाती हैं और फिर पीर के दर्स में भी यही आयात जो है डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो, बल्कि आगे भी चलाया जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल जो है वो हम जुमे के दर्स की बातें ही यहाँ पर दोबारा से करने का इरादा रखते हैं। तो पेज नंबर 421 के ऊपर जहाँ हमने पिछले पीर को अपना दर्स रोका था और वहीं से हम आगे पढ़ रहे हैं। तो मार्फुल कुरान का सफा नंबर 421 बनता है और जो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर है वो भी यही होगा क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आता लैपटॉप के ऊपर। तो उसमें हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि किसी गुनाह का सबब बनना भी गुनाह है। ठीक है, तो गुनाह जो सराहतन गुनाह है उसका सबब बनना भी गुनाह है। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है लेकिन यहाँ पर उससे आगे बढ़ करके एक और बात हजरत है। पिछले दर्स तक हमने पिछले दर्स हमने यहीं तक पढ़ा था ना जी। तो आगे फरमाते हैं कि मसलन एक उसूल यह निकल आया कि जो काम अपनी जात के एतबार से जायज मगर बल्कि किसी दर्जे में महमूद भी हो मगर उसके करने से कोई फसाद लाजम आता हो या उसके नतीजे में लोग मुबतलाए मासियत हो गए। यानी काम तो जायज है बल्कि हो सकता है किसी वक्त जो है वो काम लायक तहसीन भी हो, उसकी तारीफ भी, यानी इतना अच्छा काम हो कि लोग उसकी तारीफ भी करते हो, लेकिन अगर उसके नतीजे में कोई फसाद लाजम आता है या लोग मुबतलाए मासियत होते हैं यानी गुनाह में मुबतला होते हैं उसकी वजह से, वो काम भी ममनू हो जाता है। शरीयत का ये एक उसूल है। ठीक है, क्योंकि माबूदात बातिला यानी बुतों को बुरा कहना कम अज कम जायज तो जरूर है। अब जाहिर है कि शरीयत का उसूल जो है वो इस आयत से ड्राइव किया है। तो इस आयत के अंदर क्या था कि भाई माबूदात बातिला को, बुतों वगैरह को बुरा भला कहना, तो उसको अल्लाह ताला ने मना कर दिया। हालांकि वो तो जायज काम था, हालांकि वो तो किसी सूरत में काबिले तारीफ काम था, तो उसको फिर अल्लाह ने क्यों मना कर दिया। तो वही फरमा रहे हैं कि ईमानी गैरत के तकाजे से कहा जाए तो शायद अपनी जात में सवाब और महमूद भी हो। बुतों को बुरा भला कहना तो अपनी जात में यानी इन ऑफ इट सेल्फ जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, मगर चूंकि उसके नतीजे में यह अंदेशा हो गया कि लोग अल्लाह जल्ला शानों को बुरा कहेंगे तो बुतों को बुरा कहने वाले इस बुराई का सबब बन जाएंगे, इसलिए इस जायज काम को भी मना कर दिया गया। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट को देखा जा रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये वाला काम कर रहे हैं जो कि जायज काम है, लेकिन जायज काम का अगर कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो सही ना हो तो उसको भी मना कर दिया। जैसे पहले भी शायद बात हो चुकी है क्लास के अंदर के कुरान मजीद की तलावत करना जो है, हाँ ये पिछली सफ़े पर तो बात हुई थी कि कुरान मजीद की तिलावत करना तो कितना जायज काम बल्कि कितना महमूद काम है, कितना सवाब का काम है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट गलत हो तो कुरान की तिलावत करने से भी मना कर दिया। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर नजासत पड़ी हुई है तो उस महल में, उस मौके में कुरान मजीद की तिलावत करना भी नाजायज है, ठीक है। उसी तरह काफिर को चढ़ाने की नीयत से कुरान मजीद की तिलावत करना ये भी नाजायज है। और हमने फिर वो वाली नीयत वाला शेर भी पढ़ा था उस मौके पर कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को सारी बात याद होगी पिछले हफ्ते से। तो आगे फरमाया हजरत ने कि इसकी एक और मिसाल भी हदीस में इस तरह आई है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली ना दे। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो किसी शख्स से मुमकिन ही नहीं कि अपने माँ बाप को गाली दे। तो फरमाया कि हाँ, इंसान खुद तो गाली उनको नहीं देता, लेकिन जब वो किसी दूसरे शख्स के माँ बाप को गाली दे और उसके नतीजे में वो दूसरा इसके माँ बाप को गाली दे तो इस गाली दिलवाने का सबब ये बेटा बना। तो ये भी ऐसा ही है जैसे उसने खुद गाली दी, ठीक है। अब जाहिर है यानी गाली देना तो वैसे ही अखलाक से कमतर चीज है, बुरी चीज है, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पे पेश किया कि जब आप किसी के काम का सबब बन जाते हैं तो शरीयत जो है ना फिर आपको भी उसी के करने वाले के तौर पर शामिल कर लेती है। तो जैसे नेकी का सबब बनने पर नेकी आपके नाम अमाल में लिखी जा रही है, तो वही मामला दूसरी तरफ भी होता है कि गुनाह का सबब या किसी गैर अखलाकी काम का सबब बनने पर तो उसका जो नुकसान होता है वो भी फिर आपको मिल रहा होता है, ठीक है। दोनों साइड पर चलता है ना मामला, है इधर जैसा तो उधर भी वैसा ही। इसी मामले की एक और दूसरी मिसाल अहद रिसालत में यह पेश आई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ जमाने जाहिलियत के किसी हादसे में मुनहदिम हो गया था तो कुरैश मक्का ने बेसत नबूवत से पहले उसकी तामीर कराई थी। इस तामीर में चंद चीजें बिनाए इब्राहिमी के खिलाफ हो गई थी, यानी बिना का जो लफ्ज है वो ऐसे ही है जैसे कि हम कहते हैं ना तामीर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी जैसे तामीर की थी ना अपने जमाने में जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपने बेटे के साथ मिलकर के आप काबतुल्लाह की तामीर करें, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस फुटिंग के ऊपर और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस जिस डिजाइन के ऊपर उसको बनाया था, तो ये लोग जो जो मुशरिकीन मक्का ने जो बनाया ना तो वो उस डिजाइन पर नहीं बना सके। तो क्या तब्दीलियां हुई? एक तब्दीली तो ये हुई कि जिस हिस्से को हतीम कहा जाता है ये भी बैतुल्लाह का जुज है, तामीर में उसको सरमाया कम होने की बिना पर छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि इसके लिए इन्होंने एक खास किस्म की लकड़ी मंगवाई थी, मक्का मुकरमा में तो कोई जंगलात वगैरह नहीं होते थे तो वहां पे लकड़ी कहाँ से आएगी, तो उन्होंने कहीं जद्दा वगैरह के तरफ से ना वहां से खास लकड़ी मंगवाई थी जो कि खरीदनी पड़ी थी इनको। तो जितना पैसा था उतने से उन्होंने लकड़ी खरीदी, लेकिन पैसे ही खत्म हो गया तो इनफ लकड़ी नहीं खरीद सके, लेकिन उस जमाने में लकड़ी से ही तामीर की जाती थी काबतुल्ला की। तो अब इनके पास हलाल पैसा नहीं था लेकिन हराम पैसा मौजूद था इनके पास, तो इन्होंने हराम पैसा अल्लाह के घर में लगाना गवारा नहीं किया, ठीक है। तो इतना ये अल्लाह ताला को मानते थे और अल्लाह ताला के घर की रेस्पेक्ट करते थे, और बाकी चीजें भी आपको पता ही है कि हाजियों जो जो हज हज करने के लिए आते थे तो उनको भी पानी पिलाया जाता था बाकायदा। बनी हाशिम को जो है वो, बल्कि बनी हाशिम के एक शाख को पानी पिलाने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी बल्कि सआदत, एक तो होता है ना किसी को आपने जिम्मेदारी लगा दी, हाँ भाई तुम्हारा एक काम है अब जैसे भी हो तुम्हें ये करना है, एक होता है कि सआदत समझ करके किसी को काम दिया जाए, ठीक है। तो इतनी बड़ी ये सआदत समझते थे काबतुल्ला के हाजियों को जमजम पिलाना, ठीक है। तो इतनी अहमियत थी इनकी नजर में लेकिन मसला सारा का सारा वो आपने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम की जात के साथ था और अहकामात के साथ था इनको। तो इन्होंने जो है ना वो तामीर में सरमाया कम होने की बिना पर हतीम को कावतुल्ला से बाहर छोड़ दिया। क्या इनको म्यूट कर रहे हैं कौन लोग? अनम्यूट हो गया है एडमिन साहबा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हैं इनको म्यूट, इनकी आवाज आ रही है। ये रेज हैंड किसने किया हुआ है? इससे पहले कि इनके घर की कोई और आवाजें आनी शुरू हो जाएं, एडमिन साहब आप इनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। कर सकती हैं ना? नहीं कर सकती। तो अच्छा, दूसरा क्या डिफरेंस आया? दूसरे बैतुल्ला शरीफ के दो दरवाजे थे, शर्की और गर्बी। एक मशरक की तरफ से था, एक मगरब की तरफ से था। एक दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। यानी एक दरवाजे से दाखिल होते, दूसरे से बाहर निकलते थे। वहां से वापस पलट करके बाहर निकलने के बजाय आगे से बाहर निकल जाते थे। अहले जाहिलियत ने गर्बी दरवाजा बंद करके सिर्फ एक कर दिया, और वो भी सतह जमीन से बुलंद कर दिया, ताकि बैतुल्ला शरीफ में दाखिला सिर्फ उनकी मर्जी व इजाजत से हो सके। हर शख्स बे महाबा ना जा सके, जिसको हम कहते हैं महावतन, मुंह उठाए कोई ना जा सके, ठीक है, उसकी मर्जी है। तो इन्होंने ऊंचा कर दिया, तो अब इतना ऊंचा है कि अब बगैर सीढ़ी के चल के नहीं जा सकते काबतुल्ला के अंदर। तो और सीढ़ी जो है फिर ये लाने नहीं देते थे, अपने कब्जे में रखते थे, ठीक है। तो वरना तो कोई शख्स आराम से जाए और मुंह चुका। अच्छा, उस जमाने में बाकायदा सॉलिड किस्म के दरवाजे, लॉक एंड की वगैरह कभी मामला ऐसा नहीं होता था। तो उस वक्त उन्होंने इस तरह से ऊंचा कर दिया, और बाकायदा फिर उन्होंने लॉक एंड की भी कर दिया उसके अंदर, चाबी वगैरह का भी मामला शुरू कर दिया था। तो ये भी एक उन्होंने तब्दीली करी। अच्छा, पहली तब्दीली तो हलाल माल के कमी की वजह से करी थी, और दूसरी तब्दीली जो है वो अपनी, उसको कहा जाएगा, हराम खोरी की वजह से करी थी, ठीक है, कि दूसरों को जो है वो ना दाखिल होने दिया जाए अंदर। अच्छा, फिर और ऊंचा भी कर दिया। तो ये तीन तब्दीलियां कर दिया, ताकि बैतुल्ला शरीफ में दाखिल सिर्फ उनकी मर्जी इजाजत से हो सके, हर शख्स बेमुहाबा ना जा सके। हाजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि बैतुल्ला की मौजूदा तामीर को मुनहदिम करके हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तामीर के मुताबिक बना दूं, मगर खतरा यह है कि तुम्हारी कौम यानी आम अरब अभी अभी मुसलमान हुए हैं। बैतुल्ला को मुनहदिम करने से कहीं उनके दिलों में कुछ शुबहात पैदा ना हो जाए। तो मुसलमान तो वो हो गए हैं, कलमा उन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन दिल जो है ना वो अभी वैसा पक्का नहीं हुआ है कि ये किसी बड़ी आजमाइश को जो है ना वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि काबतुल्लाह के सामने तोड़ा जा रहा है। भाई पहले टूट गया था खुद से ना, वो सैलाब वगैरह आया था तो उस पर टूट गया था, तो उसको तो उन्होंने मान लिया कि हाँ ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ने जो है वो काबतुल्ला को रीबिल्ड करवाना था तो सैलाब के अंदर उसको तोड़वा दिया। लेकिन अब तो बाकायदा ये नए दीन जो लेकर के आए हैं, और पहले ही नबी अलैहिस्सलाम को अच्छे नहीं लगते थे, तो अब ये अगर काबतुल्ला को तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये कोई म्यूटिनी ना कर दें, कोई रिवोल्ट ना कर दें, ठीक है। तो इस खदशे से नबी अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया। फरमाया कि इसलिए मैंने अपने इरादे को तर्क कर दिया है, ठीक है। तो यही वाली जो मिसाल थी ना, यही फिर और मौकों पर भी फुकाहा ने इस्तेमाल करी। जैसे कि आपने वो मशहूर वाक्य सुना होगा कि जब मदीना मुनव्वरा के ऊपर से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत खत्म हुई, और आले सऊद ने, ये जो सऊदी अरब कहलाता है, ये क्यों कहलाता है? क्योंकि जो इमाम सऊद थे ना, तो उनकी जो औलाद थी उन्होंने ये मुल्क टेक ओवर कर लिया था, लड़ाइयां वगैरह करके सल्तनत उस्मानिया से इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अब सल्तनत उस्मानिया तो खत्म हो गई और इनका जो है ना वो कब्जा हो गया मक्का मुकरमा के ऊपर भी, मदीना मुनव्वरा के ऊपर भी, और भी बहुत सारे इलाकों पे कब्जा हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यह कब्जा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, हत्ता के पूरा ये सऊदी अरब जो मुल्क अब आपको नजर आता है, इस पूरे इलाके पर इनका कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो जब इनकी हुकूमत इस्टैब्लिश हो गई तो उस वक्त इनके बादशाह कौन थे, इनके अमीर साहब कौन थे, वो शाह अब्दुल अजीज। ठीक है, शाह अब्दुल अजीज बिन आले सऊद जो थे ना वो के बादशाह थे। तो अब इनका जो जो रिलीजियस एडवाइजर्स थे आले सऊद के, जो इनका दीनी विंग था या रिलीजियस एडवाइजर्स थे, वो आले शेख थे। आले शेख, आले शेख कौन लोग होते हैं, जो कि शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब, ठीक है, अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब के जो जो फॉलोअर्स है ना, तो वो इनका रिलीजियस साइड देखते थे। ठीक है, तो उनका जो था ना वो मामला ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा सख्त मिजाज थे। तो उन्होंने जब मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा को टेक ओवर किया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो कब्रिस्तान है ना, जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान मक्का मुकरमा में और जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा में, तो यहाँ तो हर कब्र के ऊपर जो है वो आपने कुबा कुबा बनाया हुआ है। कुबा का मतलब होता है बाकायदा एक इमारत बनी हुई है, ठीक है, छोटा सा, जिसको मजार भी कहते हैं। तो अब ये सहाबे कराम के मजार मजार बनाए हुए सारे के सारे, और हदीस में तो साफ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मजार मत बनाना, ठीक है, बस ये कब्रों के ऊपर कुबा ना बनाना। ठीक है, तो ये जो कुबे बने हुए हैं तो इनको तो फिर हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने ना जन्नतुल मुअल्ला के भी सारे कुबे तोड़ दिए और जन्नतुल बकी के भी सारे कुबे तोड़ दिए, और सिर्फ जो है वो जो कब्र थी ना उसको बाकी रखा और कुछ भी बाकी नहीं रखा। ठीक है, तो अब ये सारे कुबे यानी सारे जो वो छोटे 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 मजारात थे वो सब टूट गए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना फिर इन्होंने कहा कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के ऊपर भी ये कुबा बना हुआ है, ये जो गुम्बद खजरा है तो ये भी तो एक कुबा ही है, यानी ये भी तो एक मजार ही है, ये भी तो एक इमारत की शक्ल की चीज ही है, तो इसको भी तोड़ना है। तो उस वक्त जो है ना फिर इनके बादशाह ने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, ये हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि नबी अलैहि सलाम वाला मामला है और पूरी उम्मत जो है ना, पूरा कि पूरे दुनिया के मुसलमान जो है वो इस बारे में बहुत सेंसिटिव है कि नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के ऊपर से जो है ना वो इस इमारत को खत्म किया गया। अच्छी खासी पूरी इमारत तो उस जमाने में बनी हुई थी, वो सल्तनत उस्मानिया वालों ने ये सारे का सारा जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर दिया था, एक्सटेंशन बाद में जाकर के हुई है, लेकिन गुम्बद खजरा और उसके साथ जो सफेद गुम्बद है ये सब तो सल्तनत उस्मानिया के जमाने में बना बना हुआ था। तो अब जो है ना जब इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, तो फिर ये फैसला किया हुकूमत ने कि सारी दुनिया से जो है ना वो मुसलमान उलमाए कराम को हम इनवाइट करते हैं और हम उनसे जाकर उनसे जो है ना फिर मुशावरत करते हैं कि ये हमें तोड़ना है, तो अगर आप सब राजी होते हैं तो फिर हम इसको भी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो उस वक्त जो है ना फिर इंडिया से भी उलमा बुलवाए गए, उस जमाने में पार्टीशन तो हो ही नहीं थी, तो हिंदो पाक जो है वो एक ही सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान ही कहलाता था, तो वहां से भी उलमाए कराम बुलाए गए, तो सबके सामने जब ये सवाल रखा यानी पूरे दुनिया से यानी अफ्रीका से भी और जो है वो इराक से भी और शाम से भी और यमन से भी और बहरेन से भी और मिस्र से भी और हर जगह से जाना उलमाए कराम बुलवाए गए, तो उनके सामने जो है ना जब ये सवाल रखा गया कि भैया हम तो उसको तोड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज है तो आप दलील से उसको साबित करें अपने एतराज को, तो कहते हैं कि बिल्कुल खामोशी छा गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त जो है ना फिर जो बरेसगीर से उलमा आए हुए थे उसमें मुख्तलिफ नाम आते हैं, या तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह का नाम आता है कि उन्होंने जो है वो जवाब दिया, ये मामला जो है ना वो ऐसे ही मामला है जैसे कि काबतुल्ला की मुनहदिम करने वाला मामला था, कि अगरचे कि वो एक जायज काम था और महमूद काम भी था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस सिचुएशन की वजह से जो है ना वो उसको नहीं किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से गुंबद खजरा और ये जो पूरी की पूरी इमारत बनी हुई है नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के ऊपर, तो उसको भी जो है ना वो हमें हालात वाकयात के तकाजे के वजह से हमें नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों को बात समझ में आ गई और उन्होंने तस्लीम कर लिया और फिर उस फैसले को उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, एक और भी वाक्य आता है इसके लिए कि भाई एक और भी वाक्य ये था कि बाकायदा उन्होंने भेजे भी थे लोग इंडिया में, तो वहां पे जाकर के जब उलमा से उन्होंने बात करी, उलमा देवबंद ही थे वो, उनसे जाकर के बात करी, तो उन्होंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने, ठीक है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने ये दलील दी कि ये जो कुबा नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के ऊपर बना हुआ है ना, तो बेशक इसको मजीद बड़ा तो पहले, यानी पहले तो ये इतना बड़ा नहीं था, बड़ा तो इसको बाद में बनाया गया, ठीक है, लेकिन जो इमारत थी ना वो तो पहले भी थी। ठीक है, यानी इसके गिर्द जो दीवारें थीं और बराबर में बकायदा एक कमरा था, तो ये तो पहले भी था। क्यों? इसलिए कि ये तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। ठीक है, तो वो घर पहले से मौजूद था और कब्र बाद में बनी थी। ठीक है, जबकि जो दूसरी कब्रों के ऊपर कुबे बनाए गए तो वो कब्र पहले बनी, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुबा बनाया गया, तो इसको जो है ना फिर आप दूसरी कब्रों के ऊपर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है कि ये घर के अंदर कब्र बनाई गई है, वरना किसी दूसरे इंसान की कब्र जो है वो घर में नहीं बनाई जाती। ठीक है, ये बाकायदा ममनुआत में आता है कि घर के अंदर कब्र बना दी जाए, नहीं, बल्कि कब्र जो है ना वो कब्रिस्तान में बनाई जाएगी, हट करके बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन नबी की कब्र के लिए खास खास बात ये थी कि अबू बकर सिद्दीक उन्होंने मुसलमानों को बताया कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने ये सुना है कि नबी का जहां इंतकाल हो उसको वहीं पे दफन किया जाता है। ठीक है, तो चूंकि इनको इनका नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल आयशा सिद्दीका के हुजरे में हुआ था, तो आयशा सिद्दीका के हुजरे के अंदर ही आप की कब्र बनाई गई। ठीक है, तो इस वजह से हुजरा पहले मौजूद था और कब्र जो है वो बाद में बनी है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो इस वजह से इसको एज एन एक्सेप्शन ही डील करना होगा। तो ये भी एक दलील थी जो कि लोगों को समझ में आ गई और उन्होंने आपसे सलम के कब्र मुबारक के ऊपर जो भी इमारत थी उसको तोड़ने का फैसला खत्म कर दिया। ठीक है, अच्छा क्या लिखा, हाँ इन्होंने भी माशी जो यही वाली बात लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले ही बना हुआ था गुम्बद, तो कहीं गुम्बद खजरा नहीं बना हुआ था भाई, गुम्बद खजरा तो बहुत बाद में जाकर के बनाया। ठीक है, इन्होंने लिखा है अपने डायरेक्ट मैसेज के अंदर कि गुम्बद खजरा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले ही बना हुआ था, ये आपको किसने कह दिया? ठीक है, नहीं, ये पहले नहीं बना हुआ था। ठीक है, हजरत आयशा सिद्दीक तान का हुजरा जो कि बहुत ही कच्चा जैसे मिट्टी के घर होते थे ना, छोटा सा कमरा, वो था पहले से बना हुआ, बस और कुछ नहीं, पहले से बना हुआ था, गुम्बद शुम्बद तो बनते ही नहीं थे उस जमाने में। एनीवे, तो ये बात हो गई। अच्छा, जाहिर है कि बैतुल्लाह की तामीर को बिनाए इब्राहिमी के मुताबिक बनाना एक ताअत और कार्य सवाब था, मगर इस पर लोगों की नावाकफियत के सबब एक खतरे का तरतुब देखकर आपसे सरने इस इरादे को तर्क फरमा दिया। इस वाकये से भी यही उसूल मुस्तफाद हुआ, यानी हमने यही फायदा हासिल किया इस वाकये से भी कि अगर किसी जायज बल्कि सवाब के काम पर कोई मुफसदा लाजम आता हो तो वो जायज काम भी ममनू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आसानी से इंशाल्लाह आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसके ऊपर एक कवी इश्काल है। ठीक है, और अंदाजा तो हो गया होगा कि भाई इसका मतलब तो यह है कि जिस काम में भी आपको किसी की नाराजगी का अंदेशा हो उस काम को तर्क कर देना चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है, तो सच बोलने पे आपको लोगों के नाराज होने का खदशा हो तो आप सच बोलना भी छोड़ दें। ठीक है, और पर्दा करने पे दूसरों की नाराजगी का खौफ हो तो पर्दा करना भी छोड़ दें, और नमाज पढ़ने पे अगर किसी के नाराजगी का खौफ हो तो नमाज पढ़ना भी छोड़ दें, ठीक है? फिर तो वही हो जाएगा कि फिर बचेगा क्या उसके बाद, ठीक है? तो ये एक इश्काल जो है ना वो पैदा होता है कि जिसको रूहुल मानी में अबू मंसूर से नकल किया है वो ये कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जिहाद और कताल लाजम फरमाया है, ठीक है? वो भी जब हुक्म होता है तब जिहाद जो है वो फर्ज होता है। हालांकि कताल का ये लाजमी नतीजा है कि मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने का इरादा करेगा तो वो मुसलमानों को भी कत्ल करने का इरादा करेंगे, बल्कि कत्ल भी करेंगे, ठीक है? वरना तुम अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, कोई लड़ाई छड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो फिर जाहिर है कोई कत्ल नहीं होगा। लेकिन जहां तो फर्ज करार दिया मुसलमानों के ऊपर, तो इसमें तो फिर लड़ाई होगी, और मुसलमान का कत्ल तो हराम है, तो इस उसूल पर तो जिहाद भी ममनू हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप मुसलमान के कत्ल का सबब बन रहे हैं जिहाद करके। ऐसे ही हमारी तबलीग इस्लाम और तिलावत कुरान पर, नीज अजान और नमाज पर बहुत से कुफार मजाक उड़ाते और मजाका बनाते हैं, तो क्या हम उनके इस गलत रवैये की बिना पर अपनी इबादत से दस्तबरदार हो जाएं? तो इसका जवाब खुद अबू मंसूर ने ये दिया है कि ये इश्काल एक जरूरी शर्त के नजरअंदाज कर देने से पैदा हो गया है खाली, ठीक है? देखिए, आम इंसान जो होता है उसको तो ये बात नहीं समझ में आ रही होती, लेकिन जिसने इल्म हासिल किया होता है तो उसको ये बात अल्लाह ताला याद दिला देते हैं ना कि नहीं, देखो ये शर्त है इसके अंदर एक, जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं। गैर आलिम को जो है वो ये बात नहीं समझ में आ रही होगी। तो वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि वो जायज काम जिसको लुजूम मुफसदा की वजह से मना कर दिया गया है इस्लाम के मकासिद और जरूरी कामों में से ना, जैसे माबूदात बातिला को बुरा कहना, इससे इस्लाम का कोई मकसद मुताल्लक नहीं है, ठीक है? माबूदात बातिला को की इबादत ना करना ये इस्लाम का मकसद है, लेकिन उनको बुरा भला कहना ये इस्लाम का मकसद मकासद में से नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा हुक्म नहीं है अल्लाह ताला का। इस्लाम का मकसद क्या है? जो हमारी जिंदगी का मकसद है वही इस्लाम का मकसद है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने तुम लोगों को किसी दूसरे मकसद से पैदा किया ही नहीं, ए इंसानों और ए जिनों, मैंने किसी और मकसद से पैदा किया ही नहीं सिवाय बंदगी के, ठीक है? और बंदगी किस चीज का नाम है, यह आपको उम्मीद है कि अब तक उम्मीद है कि रट चुका होगा, ये रटने से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो, कि आपके दिलों में ये बात पैवस्त हो चुकी होगी ना, अच्छा गुमान करने में क्या बुराई है, तो आपके दिलों में ये बात उतर चुकी होगी, आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ चुकी होगी कि बंदगी का मतलब क्या है। तो बंदगी का मतलब क्या है जल्दी से अगर कोई बता दे, ताकि हमारा गुमान जो है वो आपके बारे में सही हो जाए। जी, बंदगी का मतलब है अताअत, हुक्म मानना, ठीक है? ये है मकसद जिंदगी, अल्लाह का हुक्म मानना, ठीक है? नफ्स का हुक्म ना मानना, शैतान का हुक्म ना मानना, और जो भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ आपको कोई बात कहे उसका हुक्म ना मानना बल्कि अल्लाह का हुक्म मानना, ठीक है? ये बंदगी है। तो हुक्म मानना ही मकसद जिंदगी हुआ ना, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैथमेटिक्स की चीज आ जाती है कि जब हुक्म मानना मकसद जिंदगी हुआ तो फिर मकासद शरीयत क्या हुए, हुक्म हुए। मकासद शरीयत क्या हुए, अल्लाह का हुक्म हुआ, ठीक है? क्योंकि अल्लाह का मकसद हमें दुनिया में भेजने का क्या है कि हम अल्लाह का हुक्म माने, तो हुक्म आएगा तब हम उसको मानेंगे ना, हुक्म होगा तब उसको मानेंगे ना, ठीक है? तो फिर हुक्म जो है ना ये है मकसद शरीयत, ये है मकसद दीन, बल्कि ये है मकसद जिंदगी। जब भी हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अक्सर बयानात कि शुरू में ये पढ़ा करते थे को जाके ना, एक तरह से उनका एक बड़ा अंदाज था, ये मकसद जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद, ठीक है? इस तरह से पढ़ा करते थे, मकसद जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी, ठीक है? तो असल चीज तो हुक्म है, ठीक है? तो इस वजह से इस्लाम का मकसद, अगर आप कहें कि भाई इस्लाम का मकसद क्या है, भाई इस्लाम का मकसद जो है वो अल्लाह का हुक्म मानना है, ठीक है? तो मकासद इस्लाम क्या बनेंगे? अल्लाह ताला के अहकाम बनेंगे। ठीक है, तो कोई हुक्म है कि यानी सब, ठीक है, उस क्या सब्बा या सुब्बू अल अमर मिनहु उस बुब नहीं सब्बा तसब्बा या तसब्बु अल अमर मिनहु तसब्बब तो तसब्बबु बुल माबूदातुल बातिला, माबूदातुल बातिला। ठीक है, ऐसा कोई हुक्म शरीयत के अंदर नहीं है कि भाई माबूदात बातिला को तुम गालियां दो, अल्लाह को कोई ऐसा हुक्म नहीं है। ठीक है ना, अल्लाह का हुक्म क्या है कि भाई उनको छोड़ दो, उतरुक छोड़ दो उनको, ठीक है, उनकी अतात ना करो, उनकी इबादत ना करो, ये है अल्लाह ताला का हुक्म। ठीक है, तो माबूदात बातिला को बुरा कहना तो ये तो इस्लाम का कोई मकसद है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई अल्लाह का हुक्म है ही नहीं कि तुम उनको बस बुरा भला कहते रहो। ठीक है, इसी तरह बैतुल्लाह की तामीर को बिना इब्राहिमी के मुताबिक बनाना, इस पर भी कोई इस्लामी मकसद मौकूफ नहीं था। ठीक है, इसलिए जब इस पर किसी दीनी मफसदे का खतरा लाहिक हुआ तो इन कामों को तर्क कर दिया, यानी बुतों को बुरा भला कहना भी तर्क कर दिया और काबतुल्ला को मुनहदिम करना भी तर्क कर दिया। ठीक है, और जो काम ऐसे हैं कि इस्लाम में खुद मकसूद है या कोई मकसद इस्लामी इस पर मौकूफ है, डिपेंडेंट है, अगर दूसरे लोगों की गलत रवि से इन पर कोई मुफसदा और खराबी मुरतब भी होती नजर आए तो उन मकासद को हरगिज तर्क नहीं किया जाएगा। सादा सी मिसाल के जो कि इस्लाम में खुद मकसूद है, एक मकसूद क्या है, नमाज का कायम करना। ठीक है, ठीक है, कायम करने के अंदर नमाज पढ़ना भी ऑफ कोर्स दाखिल है, तो नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम नमाज पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया एक ऐसा काम जो इस्लाम में खुद मकसूद है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, और कोई मकसद इस्लामी इस पर मौकूफ है तो इसके लिए कौन सी मिसाल देंगे, जैसे तहारत। ठीक है, कि तहारत होगी तभी नमाज पढ़ सकते हो, वरना नमाज जो है वो आप पढ़ नहीं सकते, तो ये कहा जाएगा कि नमाज जो है वो तहारत पर मौकूफ है। ठीक है, तो नहाने की जरूरत है तो नहाना पड़ेगा, वुजू की जरूरत है तो वुजू करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई जो है वो आपकी नमाज पढ़ने को देख करके कहे कि नहीं यार ये तुमने क्या शुरू कर दिया, ये तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा, तो क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कोई अगर आपको वुजू करता हुआ देखे या जो है वो देखे कि अच्छा ये तो गुसल करने के लिए जा रहे हैं साहब, ठीक है, तो कहे कि नहीं ये क्या मुसीबत है, ये क्या उन्होंने गुसल गुसल करना शुरू कर दिया, अभी तो इनको जो है वो दूसरे काम करने हैं, ये तो दूसरा काम करें, भाई उनको नमाज पढ़नी है और गुसल की उनको जरूरत है। ठीक है, तो उसके बगैर वो नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप उसके ऊपर नाराज हो रहे हैं तो क्या हम गुसल करना छोड़ दें? नहीं, क्योंकि नमाज उस पर मौकूफ है, डिपेंडेंट है गुसल के ऊपर, तहारत हासिल करने के ऊपर। ठीक है, तो इन मकासिद को हरगिज तर्क नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी कोशिश की जाएगी कि यानी ये काम तो अपनी जगह पे जारी रहे और पेश आने वाले मफासिद जहां तक मुमकिन हो बंद हो जाए। ठीक है, तो जो आपके वजू पे इतराज कर रहा है तो उसको समझाया बुझाया जाएगा कि भाई समझ जाओ ये क्या मुझे आप जो है वो हमारे वजू पे क्यों इतराज कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी काम हम कर रहे हैं, सफाई सुथराई कर रहे हैं, अच्छा है हमारे, बदबू बदबू होगी आपको भी तकलीफ होगी तो हमारी नहाने से जो बदबू दूर हो जाएगी, आपके भी तकलीफ से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसको समझाया जाए, मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो ना माने भाई हमें क्या, ठीक है, हमें तो करना है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना। ठीक है, इसी पे और भी बहुत सारे बातें बनती हैं, उम्मीद है कि अगर मौका मिला तो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, उसी को कल जो है वो कुछ चीजें इसी से मुतालिक लिखी थी। भाई अल्लाह की रजा की खातिर जब आपने काम किया है, ठीक है, और वो काम जो है वो अपनी जात में नाजायज भी नहीं था और आपकी नीयत भी अल्लाह की रजा थी, अब उसके ऊपर लोग नाराज हो रहे हैं और वो आपको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं या आपसे जो है वो कट्टी हो गए हैं और आपको जो है वो लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, तो अब आपको काम करना छोड़ देंगे क्या कि भाई लोग नाराज हो गए मेरे को काम? भाई आपने वो काम जो था वो अल्लाह की रजा की नीयत से किया था और अपनी जात में वो काम जो है वो नाजायज भी नहीं था, ठीक है, तो फिर अब लोग नाराज हो रहे हैं, तो अब आपके लिए कौन ज्यादा अहम, अल्लाह ज्यादा अहम है या आपके लिए लोग ज्यादा अहम? ठीक है भाई, अल्लाह ज्यादा अहम है तो फिर आप अल्लाह के साथ इस काम को जारी रखें क्या? अलबत्ता जो मफासिद हैं उनको आप कर्टेल करने की कोशिश कर लें, वो अच्छी बात है कि भाई अगर वो दूर हो जाए तो वो और ज्यादा अच्छी बात है। ठीक बहरा, तो फरमाया कि यही वजह है कि एक मरतबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह दोनों हजरात एक जनाजे की नमाज में शिरकत के लिए चले। वहां देखा कि मर्दों के साथ औरतों का भी इज्तिमा, तो उसको देखकर इब्ने सीरीन वापस हो गए, मगर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि लोगों के गलत रविश की वजह से हम अपने जरूरी काम कैसे छोड़ दें? नमाज जनाजा तो फर्ज है, उसको इस मुफसदे की वजह से तर्क नहीं किया जा सकता। हाँ, इसकी कोशिश मकदूर की जाएगी, यानी जितना हमारे कुदरत में हुआ उसकी हम कोशिश करेंगे कि ये मुफसदा मिट जाए, यानी ये यानी इसमें खाली ये वाला उसूल नहीं जो कि हम पीछे से पढ़ रहे हैं, बल्कि ये भी उसूल सामने आ गया ना कि औरतों का इज्तिमा हो जाना ये मुफसदा में, बाहर घर से बाहर निकल करके औरतों का इज्तिमा हो रहा है, औरतों का जलसा। और भाई औरतों का जलसा आपने करना है तो मदरसे के अंदर करें, घर के अंदर करें, ठीक है, लेकिन ये खुले मैदान में आकर के जहाँ पे जनाजा तो खुले मैदान में पढ़ा जाता है ना, तो वहां पे जो है औरतों का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं तो ये मुफसदा कह रहा है, यानी ये फसाद की चीज कह रहा है। ठीक है, तो आजकल तो फिर वो अमेरिका में इस्लाम फैल गया है पूरा का पूरा, है ना, एक से एक वीडियो बना बना कर लोग भेजते रहते हैं। ठीक है, तो वो अमेरिका में इस्लाम फैल गया है, तो वो कौन सा वाला इस्लाम फैल गया है जिसके अंदर के ना फराइज का कोई लिहाज, पर्दे का कोई लिहाज, ना अकायद का कोई लिहाज, किसी भी चीज का, अल्लाह माशाल्लाह कुछ लोग हैं जो के फराइज का ख्याल करते हुए अपने इस्लाम पे अमल कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो मुसलमानों का मामला है वो यही है कि औरतों का इस्तेमाल, और एक से एक बनठन करके फैशन शो चल रहा होता है ईद की नमाज के अंदर और जुमे की नमाज के अंदर भी। ठीक है, पर्दे वर्दे का कोई ख्याल नहीं वहां पर, तो ये सब तो मुफसदे हैं ना। इसके नाम पे लोग खुश हो रहे हैं कि जी इस्लाम गालिब आ गया, बर्तानिया में भी इस्लाम फैल गया और अमेरिका में भी इस्लाम फैल गया। भाई आप कौन से वाले इस्लाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, तो ये जो था वो मुफसदा था, तो अब इसकी वजह से हम अपनी नमाज जनाजा को तर्क, जैसे आजकल अमेरिका में जुमा पढ़ना कि भाई औरतों का मजमा हो रहा है वहां पर जुमा, तो क्या आप जुमा पढ़ना छोड़ देंगे क्या? भाई जुमा पढ़ना तो फर्ज है, तो अब औरतों का मजमा हो रहा है तो अपनी नजर बचा करके आप गांव की हिफाजत करके जुमा पढ़ने के लिए जाएं, वहां से वापस आए, और अगर आपके पास और ज्यादा असर रसूख है तो आप मस्जिद कमेटी वालों से जरा बात कर लें, उनको समझा दें कि भाई ये आप क्यों औरतों को क्यों जुमे के अंदर आपने बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, औरतें घर में जोहर पड़े उनके ऊपर जब नहीं है तो फिर आप क्यों उनके ऊपर जुमा जो है वो फर्ज करार दे दिया आपने अपनी तरफ से? ये वाकया भी रूहुल मानी में नकल किया गया है। इसलिए खुलासा इस उसूल का जो आयात मस्कूरा से निकला है वो ये हो गया कि जो काम अपनी जात में जायज बल्कि ताअत व सवाब भी हो मगर मकासिद शरिया में से ना हो, अगर उसके करने पर कुछ मफासिद लाजम आ जाए तो वो काम तर्क कर देना वाजिब हो जाता है बखिलाफ मकासिद शरिया के, वो लुजूम मफासिद की वजह से तर्क नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे मर्दों के लिए ईद की नमाज वाजिब है और जो है वो जुमे की नमाज फर्ज है और जो है वो और इस तरह के जो नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, तो मर्द इसको तर्क नहीं करेंगे। अलबत्ता जो औरतों का मजमा शुरू हो गया है तो उसको खत्म करने की कोई कोशिश की जाएगी, अगर कामयाब हो गए तो अच्छी बात, नहीं कामयाब हुई तो फिर भी भाई अपने फराइज आप छोड़ नहीं सकते। तो इस उसूल से फुकहाए उम्मत ने हजारों मसाइल के अहकाम निकाले हैं। फुकहा ने फरमाया है कि किसी शख्स का बेटा नाफरमान हो और वो ये जानता हो कि उसको किसी काम के करने के लिए मैं कहूंगा तो वो इनकार करेगा और उसके खिलाफ करेगा जिससे उसका सख्त गुनाहगार होना लाजिम आएगा, तो ऐसी सूरत में वो आपको चाहिए कि उसको हुक्म के अंदाज में किसी काम के करने या छोड़ने को ना कहें, बल्कि नसीहत के अंदाज में इस तरह कहें कि फुला काम कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो, ताकि इनकार या खिलाफ करने की सूरत में एक जदीद नाफरमानी का गुनाह उस पर आयद ना हो जाए। ठीक है, तो ये अल्लाह का हुक्म जब अहम हो जाता है किसी की नजर में, तो वो खुद भी उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, बल्कि वो अपने चाहने वालों को तो कम से कम बचाने की बहुत कोशिश करता ही है कि वो भी अल्लाह के हुक्म तोड़ने वाले ना बन जाएं। इसी को खैर ख्वाही भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खैर ख्वाही तो अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों के साथ होती है, और फिर उसके बाद दूसरों से भी जैसे जैसे उनका सारा आपका ताल्लुक है, तो उतनी उतनी खैरख्वाही जो है वो हर एक के साथ करनी चाहिए हमें। अद्दीन नसीहा, दीन तो सरासर खैर ख्वाही का नाम है, नबी अलैहिस्सलाम। ठीक है, टाइम कितना हो गया ना, 35, तो 5 मिनट। असल में हमने इनको पूरा तो पढ़ लिया था ईमान पर मसाइल, लेकिन शायद आज का पूरा ना भी हो, फिर भी हम 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। इसी तरह किसी को बाद नसीहत करने में भी अगर कराइन से ही मालूम हो जाए कि वो नसीहत कबूल करने के बजाय कोई ऐसा गलत अंदाज इख्तियार करेगा जिसके नतीजे में वो और ज्यादा गुनाह में मुबतला हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में नसीहत तर्क कर देना बेहतर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में इस मौजू पर एक मुस्तकिल बाब रखा है। ठीक है, तो किसी को आप नसीहत कर रहे हैं और आपको ये खदशा है कि वो कोई बहुत ही यानी बुरी बात उसके बदले में कहेगा, जो कोई ऐसी बात उसने इस्लाम के खिलाफ कर दी जिससे कि उसका काफिर हो जाना फिर लाजिम आएगा, या वो किसी को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में नसीहत को तर्क कर देना। ठीक है, लेकिन तर्क कर देने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि अब जो है वो आप उसके साथ खैरख्वाही करना ही छोड़ दें, ये हरगिज इसका मतलब। ठीक है, कि चूंकि आप वो जो है ना वो कोई सख्त बात कर देगा या कोई उल्टी हरकत कर देगा, तो आप नसीहत को हमेशा के लिए उसके लिए छोड़ दें, खैरख्वाही उसके साथ हमेशा के लिए छोड़ दें। नहीं, तर्क करने का मतलब यहाँ पर ये हरगिज नहीं है, बल्कि तर्क करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस अंदाज में आपको खदशा था कि अगर आप इस अंदाज में उसको नसीहत करेंगे तो उसका बहुत ही बुरा रिएक्शन आएगा, तो आप उस अंदाज को तर्क कर दें, लेकिन कीप लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी, कीप लुकिंग फॉर सम अदर वे। ठीक है ना, कोई और मौके की तलाश में रहें कि मुझे किसी और तरीके से अल्लाह ताला मौका दें, या हो सकता है भाई अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल काम है, अल्लाह ताला के लिए यानी अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं ना, तो कोई उसके ऊपर कोई ऐसी मुश्किल अगर आ गई अल्लाह की मर्जी से आई ना, हमने कोई दुआ कोई थोड़ी करी है कि अल्लाह उसको मुसीबत में मुबतला कर दें ताकि हम उसको नसीहत कर सकें, हमने दुआ तो नहीं करी है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन उसके ऊपर आ गई तो अब उसको जो है ना वो हम मौका गनीमत जान करके उसकी मुसीबत को हल करने में उसकी मदद भी करें और साथ साथ जो है वो उसको नसीहत भी कर दें। ठीक है, अक्सर जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका दिल जो है वो नरम पड़ जाता है, तो ये एक बेहतरीन मौका होता है नसीहत की बात भी उसको कर देने का, लेकिन उसकी मुश्किल में उसकी मदद करने की भी कोशिश करें और उसको नसीहत की बात भी कर दें। तो ये मुराद है यहाँ पर कि यानी तर्क कर देने का ये मुराद, का ये मतलब है। सही है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में इस मौजू पर एक मुस्तकिल बाब रखा है के बाबू मन तरका बाद अल इख्तियारी मखाफा, के बाप बाप से मुराद एक उन्होंने ना कलेक्शन ऑफ हदीसें जो है ना बुखारी शरीफ के अंदर कुछ हदीसों को एक साथ अपनी किताब में लिख करके उनके ऊपर एक चैप्टर हेडिंग बना दी, तो इसी को जो है ना वो यानी बाप कहा जाता है। तो उन्होंने इस तरह की हदीसें जैसे ये बिनाए काबा वाली हदीस है उसको लिखने से पहले बाकायदा ये चैप्टर हेडिंग बनाई कि बाबू ये बाप है मन तरा का, जिसने तर्क कर दिया बाजल इख्तियारी मखाफतन। ठीक है, इस खौफ से जो है ना वो किसी चीज को इख्तियार करना, कुछ चीजों को इख्तियार करना तर्क कर दिया। वो खौफ क्या था के युक्सरा या अई बल्कि यकसुरा फहमु बाज नासिन, वो खौफ इस बात का था उसको कि बाज इंसान जो है ना तो उनकी फहम इतनी कासिर थी इस मामले में कि वो फयाकाउ फी अशद्द मिन्हु, कि वो इससे ज्यादा मुश्किल मामले में पड़ जाएंगे। अगर मैं ये वाला काम करूंगा तो लोग अपनी कम फहमी की वजह से जो है ना वो किसी बड़ी मुश्किल मुसीबत में फंस जाएंगे, तो इस खौफ की वजह से उसने कुछ कामों को तर्क कर दिया। ठीक है, तो इमाम बुखारी ने फिर इस यानी इसके तहत ये वाली हदीसें किताब में नकल फरमाई हैं। मगर जो काम मकासद इस्लामिया में दाखिल हैं, ख्वाह फर्ज व वाजिबात हों या सुनन मुअक्कदा, यानी इवन सुनन मुअक्कदा को भी जो है वो मकासद शरिया में दाखिल किया है, ठीक है, या दूसरी किस्म के शायर इस्लामी, अगर उनके अदा करने से कुछ कम फहम लोग गलती में मुब्तला होने लगे तो इन कामों को हरगिज ना छोड़ा जाए। ठीक है, सुनन मुअक्कदा जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत ही पाबंदी के साथ किया, ठीक है, तो वो भी फिर इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि जिनको के छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो इतनी पाबंदी के साथ उम्मत के सामने करके दिखाए ना, तो वो भी फिर मकासद शरिया में ही दाखिल हो, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा पसंद इसके साथ वाबस्ता है कि आप वो वाले काम करें। जब भी तो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के सामने पाबंदी के साथ वो काम किए, वरना छुप करके कर लेते, उम्मत को पता ही नहीं लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पाबंदी के साथ ही वाले काम किए। ठीक है, तो अल्लाह ताला चाहते थे कि उम्मत भी ये काम करे, तो इसी वजह से उनको भी कासिद शरिया में दाखिल कर दिया। और दूसरी किस्म के शायर इस्लामी, ठीक है, अगर इनके अदा करने से कुछ कम फहम लोग तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि दूसरे तरीकों से लोगों की गलत फहमी और गलत कार्य को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इब्तिदाए इस्लाम के वाक़यात शाहिद हैं कि नमाज व तिलावत और तबलीग इस्लाम की वजह से मुशरिकीन मक्का को इश्तआल होता था, मगर उसकी वजह से इन शायर इस्लाम को कभी तर्क नहीं किया गया। ठीक है, यानी जब शुरू हो गए ना पब्लिक में ये काम करने, तो फिर उनको तर्क नहीं किया गया, बल्कि खुद आयत मज़कूरा के शान नुज़ूल में जो वाक़िया अबू जहल वगैरह रूसाए कुरैश का जिक्र किया गया, इसका हासिल यही था कि कुरैशी सरदार इस पर सुलह करना चाहते थे कि आप सच्चे तौहीद की तबलीग करना छोड़ दें, जिसके जवाब में आपसे फरमाया कि मैं ये काम किसी हाल में नहीं कर सकता, यानी तौहीद की तबलीग को नहीं छोड़ सकता, अगरचे वो आफ्ताब व महताब लाकर मेरे हाथ पर रख दे। उन्होंने एक सवाल को ही कुछ लिखा है कि मैं तो घर पे कहती हूँ तो भाई हमारे समझते ही नहीं है, मुसीबत के वक्त कहती हूँ तो समझते हैं, फिर मुसीबत चली जाए तो फिर वही रवैया हो जाता है, बस आप अपने काम को जारी रखें, मुसीबत के वक्त भी उनको समझाएं और मुख्तलिफ अंदाज से समझाएं, मुख्तलिफ दलाइल से समझाएं, उन तक जो वो ऐसी बात पहुंचाएं जो कि अल्लाह की जात से उम्मीद रख करके कभी शायद उनको बात समझ में आ जाए, आप अपना ये काम करते रहें, बस लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, लेकिन नसीहत का काम जो है ना ये कभी भी तर्क ना करें। एक तरीके से नहीं मानते तो दूसरे तरीके से समझाएं, दूसरे से नहीं मानते तो तीसरे से नहीं मानते, चौथे से वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहती हूँ तो कहते हैं कि मुझे ज्यादा पता है, तो इसका भी आप सहूलत से जवाब दे दें कि एक तो ये जवाब इसका दिया जा सकता है कि मैं इल्म हासिल कर रही हूं तो इस वजह से मुझे ज्यादा पता है, वरना मुझे ख्वाब में तो नहीं ये बातें पता चल रही हैं। ठीक है, अगर मुझे मैं अगर क्लेम कर रही होती कि नहीं ये बस मुझे इल्हाम हुआ है या मुझे जो है ना वो बात समझ में आ गई है, तो वो मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ, इस वजह से तो फिर तो वो यही समझेंगे और अकबर होंगे कि ये अपने आप को ज्यादा अल्लामा समझती है। ठीक है, तो इसी वजह से ना जब बात की जाती है ना तो फिर सोर्सेस को भी कोट किया जाता है ना, ठीक है, कि भाई ये मैं अपनी तरफ से बात को थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बात को थोड़ी कर रही हूँ, बल्कि मैं तो जो वहां से सुना है वो आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो आप समझा, वो आपको सिर्फ पहुंचा रही हूँ, मेरा काम तो पहुंचाना है, मैं बात पहुंचा रही हूँ। तो इसका फिर अक्सर जो है ना लोगों के पास जवाब नहीं होता है। ठीक है, इस पे ये एक मिसाल भी दे सकते हैं ना, कि मिसाल जैसे अगर आपने कोई दुनियावी तालीम हासिल करी हुई है, ठीक है, तो दुनियावी तालीम का जो आपका शोबा है तो अब लोग जो है वो इस पे इतराज नहीं करते कि अगर आप अपने दुनियावी तालीम जो आपने हासिल करी है उसमें से कोई उनको चीज बता रहे हैं तो ये नहीं कहते कि तुम्हें ज्यादा पता है, उनको पता है कि भाई ये यूनिवर्सिटी गई है, ये जो है वो इसने किताबें पढ़ी हैं, इसने जो है वो टीचर से वाले सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो इस वजह से ये बता रही है ये, कि थोड़ी अपनी तरफ से तो नहीं कॉन्कॉक्ट करके, अपनी तरफ से इख्तरा करके जो है वो चीजें हमें बता रही है, बल्कि एक्सपर्ट्स की जो राय है या एक्सपर्ट्स की जो बातें हैं वो हमें बता रही है। ठीक है, तो यही मामला जो है वो दीन के साथ भी है। अब लोग जाहिर है यानी रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, बिहेव इस तरह से करते हैं कि जैसे दीन पे ये बात बताई नहीं होती। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप समझा सकते हैं कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट दीन पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, दीन में भी जो है वो इल्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये नहीं है कि बस देखा देखी जो है वो चंद इबादतें जो आपने किसी को देखते करते हुए देख लिया तो वही इबादतें आप करना शुरू हो गए और दीन मुकम्मल हो गया आपका। नहीं, ऐसा नहीं है कि बस देखा देखी चंद काम कर लेना यही दीन है, इसके अलावा और कोई चीज दीन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि दीन में बहुत ज्यादा इल्म का अमल दखल है, और इल्म के साथ जो है वो काम करना, इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को भी यूज करें इस मामले में। ठीक है, कि भाई बाकी चीजों में तो इल्म को अहम समझा जाता है, और इल्म की बुनियाद पे जो है वो अमल को सही समझा जाता है, और दीन में जो है वो किस चीज को सही समझा जाता है, बस जो है वो जो हमने ऊपर से सुना था, हमने अपनी दादी को करते हुए देखा था, बस उसके अलावा और कुछ दीन नहीं। उसकी वजह यही है ना कि लोगों को ये नहीं पता कि और क्या क्या चीजें हैं दीन के अंदर। उन्होंने कभी क्लास सुनी होती है, उन्होंने कभी जो है वो दर्स सुना होता, उन्होंने कभी बाकायदा कोई थोड़ा सा भी इल्म हासिल किया होता, तब जो है वो उनको पता चला अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन इसके बारे में शैतान ने लोगों को बहुत ही मुबतला किया भाई कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये जो चंद अमाल बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसको आप क्लियर करने की कोशिश करने की, ऐसा नहीं है। ये अजम्पशंस जो है ना, ये यानी बुनियाद है, ठीक है, गलत फहमी की, तो अजम्पशंस को पहले तोड़ना पड़ता है, पहले जो है ना इनको निगेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद बंदा इस गलत से बाहर निकलता है, तब जो है वो थोड़ा बहुत इल्म के लिए जो है ना वो खुलता है। अच्छा, बस बाकी जो 1.5 पौने 2 सफ़े रह गए हैं तो वो या तो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, या ये कि जुमे के दर्स के अंदर वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आज या कल में आपके साथ शेयर कर ली जाएगी ग्रुप के ऊपर, तो उस वो सुन लेंगे, तो ये इन सफात की भी एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने नहीं सुनी थी तो उनको सुनने को मिल जाएगी। फिर अगली क्लास से हम आगे की आयत शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आज की क्लास रोकते हैं। बात की समझ आऊँ तो अलहमदुल्ला।